राधिका अपनी मम्मी के बिस्तर के पास फर्श पर सुनसी बैठी थी। उसके कानों में उनके कहे शब्द गूंज रहे थे। शायद उन्हें आभास हो गया था कि अब उनका अंतिम वक्त निकट है और आखिरी बार वो अपनी बेटी को देखना चाहती थी। माँ का दिल महीनों से अपनी बेटी को देखने को तरस रहा था। दिल में बहुत सी बातें थी जो वो राधिका से करना चाहती थी। शायद उसी के इंतजार में उन्होंने अपनी सांसों की डोर को थामा हुआ था। अपनी आखिरी इच्छा बताकर, राधिका से माफी मांगकर, अपने मन का बोझ हल्का करके वो हमेशा हमेशा के लिए जिंदगी के संघर्षों से मुक्ति पा गई थी। अपनी माँ के साथ बिताए अंतिम पलों को याद करते हुए राधिका की आंखें भर आईं। दुख इतना ज्यादा था और क्षति इतनी बड़ी कि मन को सब्र ही नहीं आ रहा था। तब से तो अपनी बहनों के लिए उसने किसी तरह खुद को संभाला हुआ था, पर अब उसके आंसू उसकी एक नहीं सुन रहे थे। राधिका, यहाँ का काम खत्म हुआ, अब चलो मेरे साथ घर वापस। राधिका के कानों में अजय की आवाज़ पड़ी और उसका मन कड़वाहट से भर गया और चेहरा गुस्से से जल उठा। शर्म नहीं आई आपको मुझे ये कहते हुए? अभी अभी मेरी माँ का अंतिम संस्कार हुआ है, मेरा परिवार बिखर गया है, मेरी बहनें इतनी तकलीफ में हैं, मेरे पापा को सहारे की ज़रूरत है, घर मेहमानों से भरा है और घर की सबसे बड़ी बेटी होने के नाते सब कुछ मुझे देखना है, सबको मुझे संभालना है, और आप मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हैं? मैंने अपनी माँ को खोया है, मेरा दुख मेरा दर्द आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा। मुझे संभाले ऐसी तो उम्मीद मुझे आपसे थी ही नहीं, क्योंकि आपको मुझसे तो कभी कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं। पर क्या आपके अंदर की इंसानियत भी मर गई है? ऐसे मुश्किल वक्त में तो अनजान लोग भी साथ दे देते हैं, दर्द बांट लेते हैं, और कुछ नहीं तो सांत्वना ही दे देते हैं। पर आपको सिर्फ खुद से मतलब है, आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, और कितना गिरेंगे आप मेरी नज़रों में? आपकी खुदगर्जी की कोई सीमा है भी या नहीं? मुझे इस वक्त यहाँ से चलने को कहते हुए ज़रा भी शर्म नहीं आई आपको? राधिका बेहद गुस्से में थी और उससे बड़ा था उसका दर्द और निराशा। अभी अभी तो अर्चना जी का अंतिम संस्कार करके सब घर लौटे थे, उसके ऊपर उसके पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी जिससे वो मुंह नहीं मोड़ सकती थी, और अजय की बात सुनकर उसे उसकी खुदगर्जी देखकर नफरत होने लगी थी उससे। तुम्हारी माँ के साथ जो होना था हो गया, उनका अंतिम संस्कार भी हो गया है, अब तो यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं। वैसे भी तुम्हारी शादी हो चुकी है तो तुम्हें अपने घर गृहस्थी पर ध्यान देना चाहिए, यहाँ के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। अजय की ये बेशर्मी भरी बातें सुनकर राधिका का गुस्सा उसके चरम पर पहुंच गया। ये मेरा परिवार है, मैं यहीं रहूंगी अपने परिवार के साथ, आप जाइए अपने घर और लौटकर दोबारा कभी यहां मत आइएगा। राधिका का यूं तेज आवाज में बात करना, उसकी बात मानने से इनकार करना अजय से बर्दाश्त न हुआ। उसने गुस्से में राधिका की बांह को थामते हुए उसे अपने करीब किया और जलती निगाहों से उसे घूरने लगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी बात मानने से इनकार कर रही हो, मेरे साथ जाने से मना कर रही हो, भूलो मत मैं पति हूं तुम्हारा, जहां मैं हूं वहीं तुम्हारा घर है, मुझसे ही तुम्हारी पहचान है। अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो कहीं की नहीं रह जाओगी तुम, जिन लोगों को अपना परिवार कह रही हो सबसे पहले वही लोग तुम्हें यहां से बाहर निकालेंगे, इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि अपनी अकड़ दिखाना बंद करो और चुपचाप मेरे साथ वापस चलो। और अगर ना चलूं तो क्या करेंगे आप? राधिका ने बिना घबराए उसकी निगाहों से निगाहें मिलाते हुए सवाल किया। उसकी इतनी हिम्मत देखकर गुस्से से अजय ने अपने जबड़े भींच लिए। अगर तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ वापस नहीं चली तो कभी दोबारा उस चौखट पर कदम रखने का सोचना भी मत, यहीं पड़ी पड़ी सड़ती रहना, ना मैं तुम्हें दोबारा लेने आऊंगा और ना तुम्हें अपने घर आने दूंगा। छोड़ी हुई औरत कहलाओगी तुम, जो शादीशुदा तो होगी पर उसका पति उसके साथ नहीं होगा। फिर देखूंगा मैं कि अपनी शादीशुदा बेटी को कितने वक्त तक तुम्हारा बाप अपने घर पर बिठा कर रखता है, कब तक तुम्हारा बोझ उठाता है, और तुम कितने वक्त तक समाज और लोगों के ताने सुनकर यहाँ अपने मायके में पड़ी रहती हो। आखिर में लौटकर तुम मेरी ही चौखट पर आओगी, तब मैं तुम्हारी औकात दिखाऊंगा कि मेरे फैसले के खिलाफ जाने का क्या अंजाम होता है। अजय की ये बेहूदी बातें और धमकी सुनकर राधिका ने तिरस्कार भरी नजरों से उसे देखा और उपेक्षा से होंठ टेढ़े कर लिए। यही आता है आपको, और अब तक समाज और परिवार का भय दिखाकर ही मुझे इस खोखले रिश्ते की बेड़ियों में बांध कर रखा है आपने। आपको लगता है कि आपकी इन धमकियों से डरकर मैं आपके इशारों पर चलने वाली कठपुतली बन जाऊंगी, आपकी हर सही गलत बात मान लूंगी और आप मुझे अपने साथ रहने पर मजबूर कर लेंगे जैसे अब तक करते आए हैं? पर आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है, क्योंकि मुझे आपकी इन धमकियों से कभी डर लगा ही नहीं। मैं तो शादी के अगले दिन ही आपको छोड़ देती, वो तो मेरी माँ ऐसा नहीं चाहती थी, और सिर्फ अपनी माँ के कारण मैं आज तक सब कुछ खामोशी से सहती रही, लेकिन अब मेरी माँ नहीं रही, आपकी मुझे दिए दर्द में घुट घुट कर मर गई वो, अब मुझ पर कोई बंदिश नहीं जो मुझे आपके साथ रहने पर मजबूर करे। बहुत सह लिया मैंने, इस रिश्ते को निभाने के लिए क्या नहीं किया मैंने, पर अब आजादी चाहिए मुझे इस रिश्ते से, आपसे। आप क्या छोड़ेंगे मुझे, मैं आपको छोड़ती हूँ। आप इस काबिल ही नहीं कि मैं आपके साथ अपनी जिंदगी भर बात करूं। राधिका की बात सुनकर अजय स्तब्ध रह गया। वो तो बस उसे डरा रहा था, उसे कहां अंदाजा था कि राधिका इतना बड़ा फैसला ले लेगी। पर अभी राधिका की बात पूरी नहीं हुई थी। मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं आप कि आपके बिना मेरा कोई वजूद नहीं, ये समाज और लोग मुझे जीने नहीं देंगे। तो जब इतने वक्त तक मैंने उस नर्क में जिंदगी गुजार ली, तो आगे भी सब सह लूंगी। मेरे इतने बुरे दिन कभी नहीं आएंगे कि मुझे लौटकर आपके पास वापस आना पड़े, तो आप निश्चिंत रहिए। आपने मुझे बहुत कम आंक लिया, मेरे माँ बाप ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं खुद से अपने और अपने परिवार को संभाल सकती हूँ। मुझे किसी के सहारे, तरस या दया की कोई जरूरत नहीं, और ना ही मैं किसी पर बोझ बनूंगी। आपने तो मुझे खुद पर आश्रित रखा, मेरी पढ़ाई छुड़वाई, मुझे बाहर जाकर काम नहीं करने दिया, सिर्फ इसलिए ताकि मैं आत्मनिर्भर न बन जाऊं, अपनी हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आपका मुंह देखूं, ताकि आप मुझे अपने नीचे दबा कर रख सकें और मैं मजबूर हो जाऊं आपकी हर ज्यादती खामोशी से सहने के लिए। पर मुझे पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर गए आप। आज तक उस रिश्ते और अपने परिवार के लिए मैंने सब सहा, हर तरह का समझौता किया, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमजोर हूं। मुझे गलत के खिलाफ आवाज उठाना भी आता है और अपने हक के लिए लड़ने की हिम्मत भी रखती हूं मैं। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, पर बस अब और नहीं, आज अभी और इसी वक्त मैं इस रिश्ते को तोड़ती हूँ। चले जाइए यहाँ से और दोबारा कभी इस चौखट पर कदम रखने की हिम्मत मत कीजिएगा। मुझे मजबूर मत कीजिएगा कि आपका असली चेहरा कोर्ट में सबके सामने लाऊं, इसलिए चुपचाप म्यूचुअल अग्रीमेंट पर डिवोर्स दे दीजिएगा। इसके बाद उसने खींच कर अपने गले से अपना मंगलसूत्र उतारा और अजय की हथेली पर रख दिया। ये पकड़िए इस रिश्ते की आखिरी निशानी और अब मेरे घर से निकल जाइए। अपना इतना अपमान अजय से बर्दाश्त न हुआ, उसने अपनी मुट्ठी को इतने कस के बींचा कि मंगलसूत्र उसके हाथ में चुभने लगा। धधकती निगाहों से उसे घूरते हुए, गुस्से से बौखलाते हुए उसने इतने जोर से मंगलसूत्र फर्श पर फेंका कि उसके मोती टूटकर यहां वहां बिखर गए। गुस्से में उसने राधिका पर हाथ उठा दिया, पर इस बार उसका हाथ राधिका के जिस्म को छूता उससे पहले ही किसी की सख्त हथेली ने इतने कस के उसकी कलाई को थामा कि दर्द की एक लहर सी उसके पूरे बदन में दौड़ गई। उसने गुस्से से उस इंसान को देखा, आशुतोष मजबूत चट्टान बनकर उसके और राधिका के बीच खड़े थे। उनका चेहरा पत्थर जैसे सख्त था और आंखें आग उगल रही थी। गुस्से से उनका वजूद कांप रहा था और सांसें तेज चल रही थीं।
ये मेरा घर है और यहाँ मेरी बेटी पर हाथ उठाना तो दूर, अगर एक उंगली भी उठाई तो हाथ तोड़कर रख दूंगा तुम्हारा। अब तक तुम्हें जो करना था तुमने किया, पर अब राधिका अपने बाप के घर में खड़ी है और खबरदार जो यहाँ उसको आंखें दिखाई, उस पर चिल्लाए या उस पर अपनी मर्दानगी दिखाने की कोशिश की। माँ मरी है उसकी, बाप अब भी जिंदा है और इतना दम है उसके बाप में कि तुम्हारे जैसे एक नहीं चार चार को अकेले संभाल सकता है, पर अपनी बेटी पर आंच नहीं आने देगा। बेटी ब्याही थी मैंने, बेची नहीं थी। जो तुम उसके साथ कुछ भी करोगे और मैं चुपचाप देखता रहूंगा। तुम्हारी बीवी बाद में बनी है, ये मेरी बेटी पहले है और अब मेरी बेटी यहीं रहेगी मेरे पास। मैंने इस विश्वास के साथ अपनी लाडली बेटी को तुम्हें सौंपा था कि तुम खुश रखोगे उसे, पर तुम तो उसके काबिल ही नहीं थे, और जो मेरी बेटी के काबिल नहीं उसके दुखों की वजह है, उसकी परछाई भी मैं अपनी बेटी पर नहीं पड़ने दूंगा। सुन तो लिया ही होगा तुमने मेरी बेटी का फैसला कि वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। अब उसके बाप का फैसला भी सुन ले। उसकी बेटियां उसका गुरूर हैं, उसके सर का बोझ नहीं। मैं सारी जिंदगी अपनी बेटी को अपने घर बिठा लूंगा, पर तेरे जैसे नामर्द के पास अपनी बेटी वापस नहीं भेजूंगा, जिसको उसकी कद्र नहीं, जो उस पर हाथ उठाने को अपनी मर्दानगी समझता है। अब जैसे आया था वैसे ही वापस चला जा, और दोबारा कभी मेरे चौखट पर मत आना, मेरी बेटी की परछाई से भी दूर रहना। उनकी बुलंद आवाज वहां गूंज उठी। उन्होंने गुस्से में उसका हाथ झटका, जिससे अजय के कदम लड़खड़ा गए, पहले राधिका और अब आशुतोष जी। इतनी इंसल्ट हुई उसकी कि उसका गुस्सा आपे से बाहर हो गया, पर वहां लगी लोगों की भीड़ देखकर उसने अभी वहां से निकलने में ही अपनी भलाई समझी। देख लूंगा मैं तुम दोनों बाप बेटी को, इस इंसल्ट का बदला जरूर लूंगा मैं। तुम्हारे खानदान को अगर अपने आगे नाक रगड़कर माफी मांगने पर मजबूर नहीं किया तो मेरा नाम अजय नहीं। अजय ने गुस्से भरी निगाहों से दोनों को घूरते हुए धमकी दी और गुस्से में वहां से निकल गया। आशुतोष जी की निगाहें उसे ही घूर रही थीं। इतने में उनकी तीनों बेटियां, जो अपने बाप पर गर्व महसूस कर रही थीं, दौड़ते हुए आकर उनके गले से लग गईं। आशुतोष जी ने भी अपनी बेटियों को अपनी बाहों में समेट लिया। उनकी जिंदगी भर की पूंजी थे ये, उनके जीने की वजह, उनका गुरूर। लव यू पापा। पापा आप तो बहुत कूल हैं, आपने कितना अच्छा सबक सिखाया जीजू को। हाँ पापा, जैसे आपने जीजू को जवाब दिया ना, उनकी तो बोलती ही बंद हो गई थी और आपको सामने देखकर सिट्टी पिट्टी भी गुल हो गई थी। उनका चेहरा देखकर मुझे तो बहुत हंसी आ रही थी, पर एक कमी रह गई पापा, आपको उन्हें एक झन्नाटेदार थप्पड़ भी मार देना चाहिए था। जब आपका झापड़ खाकर कान में सिट्टी बजती ना और गाल सुन हो जाते, तब उन्हें पता चलता कि दीदी पर हाथ उठाने का क्या अंजाम होता है। तीनों खुशी से चहक रही थी, पर अप्पू मैडम को बड़ा अफसोस हो रहा था। उसके मन को शांति जो नहीं मिली थी, और उस दृश्य को याद करते हुए उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था जब अजय ने राधिका पर हाथ उठाया था। राधिका खामोश खड़ी नम आंखों से अपने पापा और बहनों को देख रही थी, जिन्हें उसकी कमजोरी बनाकर उसकी मम्मी और अजय ने अब तक उसे वो सब सहने पर मजबूर किया था। आज वही लोग अजय और उसके बीच ढाल बनकर खड़े थे। आशुतोष जी को अब राधिका का ख्याल आया तो उन्होंने तीनों को खुद से अलग किया और राधिका की ओर पलट गए। पापा, मैं रह सकती हूँ ना यहाँ आपके साथ? राधिका ने रुंधे स्वर में सवाल किया और उम्मीद भरी नज़रों से उन्हें देखने लगी। जिस तरह वो उन्हें देख रही थी, आशुतोष जी की आंखें छलक आईं। ये आपका ही घर है बेटा, आप ये तो नहीं कहेंगे मुझसे कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा। अगर मैं रिश्ता तोड़कर घर बैठ जाऊंगी तो मेरी बहनों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। बेटा, आप हमारी बेटी हैं, इस समाज की नहीं। अपनी बेटी को हम जानते हैं, ये लोग नहीं। हमें पता है कि हमारी बेटी कभी कोई गलत फैसला नहीं ले सकती, और आज का दामाद जी का व्यवहार देखने के बाद तो हम खुद कभी आपको वापस उनके पास नहीं भेज सकेंगे। हम तो सोच भी नहीं सकते कि आपने इन महीनों में क्या कुछ सहा होगा और उन जैसे मगरूर, अशिष्ट और अभिमानी आदमी संग कैसे इतने महीनों तक गुजारा किया होगा। जब हमारे ही घर में हमारे सामने उन्होंने आप पर हाथ उठा दिया, तो वहां अपने घर में तो जाने क्या सलूक करते होंगे आपके साथ। उनका ये जवाब सुनकर राधिका की आंखों से आंसू बहने लगे और अपने पिता के सीने से लगी वो फपक फपक कर रो पड़ी। आशुतोष जी ने उसे रोका नहीं, समझ रहे थे कि उनकी सहनशील बेटी अगर कमजोर पड़ी है तो बहुत कुछ सहा होगा उसने। ये उसका दर्द है जो आंसुओं के रूप में बाहर आ रहा था, और वो बस प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसे जी भर कर रो लेने दे रहे थे ताकि उसका मन हल्का हो जाए। टू बी कंटिन्यूड।